ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्डं जागुडरोचिसंविदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् दामो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञेय राधे तं मां चरणन्ति भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरण। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्मानुनुभिक्षुमन्नं कृपां बुधिर्जा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरा मह्यं ददाति सपदा। आज हम लोग बहुत ही कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं की मधुर स्थलों को हम लोगों ने दर्शन किया। पहले ही सवेरे यहां से हम लोग प्रेम सरोवर में गए जहां पर राधिका और कृष्ण का मदनाख्य भाव प्रकटित हुआ था। वहां से हम सीधे चले गए साकेत। वहां पर साकेत में राधा रमण बिहारी, फिर संकेतेश्वरी बीरा, वृंदा जोग माया इत्यादि दर्शन किया, उनके संबंध में बतलाए। वहीं पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी हम लोगों ने देखा, समाधि ने भजन कुटी देखा। तत्पश्चात जोग माया पौर्णमासी की गुफा को दाहिने तरफ छोड़कर और सीधे हम लोग उद्धव क्यारी अथवा कदम्ब क्यारी दोनों को छोड़ करके के बोल छे तुम ही बोल छे छोड़ दो रहने। तो वहां कदम्ब क्यारी में पानी भरा हुआ है, इसलिए मैं पैदल भी नहीं जा सका। पैदल जाना भी बड़ा भारी कठिन है, इसलिए जाना छोड़ दिया वहीं को और उनको प्रणाम करके आगे बढ़ करके ललिता कुंड को और बाएं तरफ में नंद बैठक को छोड़कर हम लोग आगे गए नंद भवन में, नहीं पवन सरोवर में, और फिर चरण पहाड़ी और वहां से होकर के नंद भवन में आप लोगों के साथ में फिर भेंट हुई। तत्पश्चात हम लोग वहां से आप लोग शीशी और कदम बटेर में गए होंगे। पवन सरोवर को दर्शन करने के बाद में प्रसाद कहाँ हुआ? आशीषेश्वर महादेव, बहुत ही अच्छा हुआ। महादेव जी के निकट में प्रसाद पाया और फिर वहां से सीधे आप लोग चले आए। पवन सरोवर भी ये गए थे जिसमें वहां पर महाराज लोगों ने उनका महत्व वर्णन किया होगा। अभी सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है पवन सरोवर के तट पर, उसके संबंध में श्री भक्ति वेदांत बन महाराज जी संक्षेप में कुछ क्या विहंगम दृष्टि डालेंगे। Can you? Something?
ॐ गणतिमिरां रश्यजनाञ्जन शलाभय चक्षुर्मिदं येना तस्मै श्री गुरवे नमः वैराग्यजो
भक्तिरसंप्रियपाय
नमः मनभिस्वन्दं कृपां बुधि
जपरदुःखदुःखी
प्रभु माश्रय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
भक्ति
वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर विष्णुपाद परिप्राज आचार्य वर्ज नेत्रलाभ विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं
पूज्य पात्र विक्रम महाराज
नित्रला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सुरत विक्रम महाराज
और गुरु वर्ग
समस्त गुरु वर्ग के चरण में मैं यथायथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्रीलो महाराज जी मुझे आदेश दें पावन सरोवर की कथा एवं सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी और उनके साधन भजन और उनके उपदेशावली के ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए गुरु वैष्णव के अनुगत और जिस लीला स्थल पर पावन शब्द पवित्र जिस सरोवर में स्नान कर से जीव पवित्र हो जाता है, पवित्र यानी कृष्ण प्रेम ही जिसके हृदय में प्रकट होता है। ये पावन सर के बारे में श्रील महाराज जी वर्णन करते हैं। विशाखा जी के पिताजी के नाम पावन
थे,
उन्होंने
बोल दो
सरोवर के जो है निर्माण कराया था और उसी सरोवर के तट पर विश्वभानु महाराज अपने पुत्री के लिए अर्थात श्रीमती राधा जी के लिए एक विशाल जो है अट्टलिका भवन जो है का निर्माण कराया था। जिस पावन सरोवर में राधा कृष्ण की अत्यंत निगुड़ लीला आदि होती थी, जिसमें कृष्ण गोचारण के पश्चात उसी सरोवर में और गायों के जो है पानी यानी जल जो है पान
पेशाब लग गए
और उसमें उस समय गायों के बुलाते थे और चूचू अर्थात पानी पियो और फिर तीरी अर्थात तीर के ऊपर आ जाओ। इसी प्रकार जो है कृष्णचंद्र गायों के जल पान कराना और उसमें अनेक प्रकार की लीला विलास भी करते। स्नान के समय एक तरफ
राधाष्टमी का प्रसाद है लूट का
स्नान हुआ है और दूसरी तरफ कृष्णचंद्र सखाओं के साथ स्नान आदि करते थे और पानी में कभी कभी गोता लगते डुब देते थे और जाकर श्रीमती राधा जी के जो है चरण स्पर्श आदि करते थे और इसी प्रकार
आज तो हम
अनेक प्रकार के लीला विलास आदि करते।
फिर भी कल
अभी हम लोग आ जाए
शाम को
सनातन गोस्वामी के भजन
कल ही आ जाऊं विदाई को
चैतन्य
महाप्रभु
आज ही आ जाए
जितने परिकर
आज ही तुम्हारी विदाई
उसमें रूप और सनातन के नाम विशेष
कोई जरूरत हो
श्रीमद सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट
दोपहर को
दास रघुनाथ एक छाय गोसाई जब ये प्रजे कैलवास राधा कृष्ण नित्य लीला महाप्रभु विशेष करके रूप और सनातन गोसाई के साथ वृंदावन की भजन की
आदि दान देने के
महाप्रभु जब
देने के लिए कहा दान दे करके जाओ।
रूप और सनातन के निकट मिले थे राज पे
कैसो मांगे दान दही को
राम के अधिकारी। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु कहा था ये आप लोग वृंदावन जाए और वृंदावन में जाकर के हमारी जो है अविष्ट विजय पूर्ति करें। अतः लुप्त तीर्थ उद्धार और भक्ति ग्रंथ प्रणयन शिव विग्रह प्रकाश राग मार्ग और वैधि मार्ग की प्रचार चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रकार के मनोभीष्ट रूप सनातन भी किया। सिर्फ सनातन गोस्वामी पाद इस पावन सरोवर के निकट रहकर के भजन करते थे और विशेष के नंदगांव शास्त्र में ऐसे भी वर्णन होते हैं जैसे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं जो वैकुंठा जनितो बरा मधुपुर इसी श्लोक में राधा कुंड के सर्वोत्तम स्थान बताया किंतु हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और संघ के ग्रंथ में अभी कहीं के भी ऐसे भी बनकर वर्णन करते हैं नंदगांव भी कभी कभी राधा कुंड से भी श्रेष्ठ बताते हैं।
कहां बतला है? वो विश्राम घाट को और तो नहीं कहने देगा इसलिए ऐसा ओ तुम्हें चक्रीर्तन कर दो। अरे तुम ही महामंत्र अथवा जाए हल्का है तो छोड़
गोती पुनः पुनः कर्म भी
सनातन गोस्वामी पाद नंदगांव में कुछ दिन रह करके भजन आदि और विशेष करके नित्य प्रत्यह श्रील सनातन गोस्वामी पाद और तेर कदम में जहां पर श्रील रूप गोस्वामी पाद भजन करते थे नित्य प्रत्यह तेर कदम में जाकर के उनके निकट और हरि कथा आदि चर्चा आदि करते थे जिस कथा प्रसंग आज हम लोग पूज्यपाद केतु महाराज जी के मुखारविंद हम लोग श्रवण किया था ये किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद के निकट जाकर के अत्यंत दीन होकर के बैठते थे और वह समस्त हरि कथा आदि श्रवण करते थे और जिस कथा श्रवण करने के लिए स्वयं श्रीमती राधिका साधारण एक गोपालिका के रूप में आकर के भी और बैठते थे और कहते थे बाबा आप लोग ये हमारे माता जी ने यह चावल चीनी और दूध आदि भेजे हैं आप इस पे खीर बनाए रूप सनातन गोस्वामी भजन कथा में और विशेष करके भागवत की जो प्रथम श्लोक जन्मादस्य जतः इसी श्लोक की तरह तरह के व्याख्या में इतने निमग्न थे श्रीमती राधिका उसी कथा को सुनने के लिए इसी बहाने से स्वयं ही कहने लगे अच्छा बाबा आप तो व्यस्त है बनाने पाने मैं बना देती हूँ और राधा जी वहीं पर बैठ करके और उसी बना दी थी श्री महाराज जी इस संदर्भ में वर्णन करते थे देखो शिव राधा जी बनाया इसलिए राधा जी उन लोग जो है ये समस्त सुंदर सुंदर जो व्याख्या आदि सुनने के लिए स्वयं राधा जी बैठी थी इसलिए शास्त्र में कहते हैं परस्परानुकथनम मिथो रोति मिथोपबद्धते शास्त्र में वर्णन करते हैं जब तब दो भक्त एक ही साथ में बैठते तब राधा गोविंद के चिंतन में डूब जाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं और दूसरे भी आनंदित करते हैं ये समस्त हमारे रूप गोस्वामी के भजन सिद्धांत कैसे भजन करते थे वृंदावन में रह करके छप्पन दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिने नहीं जाने चारि दंड सुते थके सपने राधा गोविंद देखे दिन और रात मिला करके 60 दंड है उस 60 दंड में केवल मात्र जो है 4 दंड जो है विश्राम करते थे और 56 दंड अपने भजन साधन में रहते थे कवि चैतन्य महाप्रभु की लीला आदि स्मरण करते थे कवि ग्रंथ आदि लिखते थे सनातन गोस्वामी पाद विशेष करके उन्हें ग्रंथ लिखा बृहद भागवतम मृत ग्रंथ ऐसे अमूल्य ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किया। यदि यद भागवत अमृत ग्रंथ नहीं होते आज वैष्णव समाज में ना जाने कैसे अंधकार छा जाए। सनातन समयपाद यद भागवत ग्रंथ में समस्त प्रकार के तत्व सिद्धांत रस माधुर्य आदि सब कुछ रखा है। इस सनातन गोस्वामी के बृहद भगवत ग्रंथ के बेसिस करके ही हमारे जितने प्रकार जितने गोस्वामी जो है और सारे ग्रंथ आदि प्रकाश किए इसके प्रमिनेंट माना गया। सनातन गोस्वामी के बृहद भगवत अमृत ग्रंथ हरिभक्ति विलास यद्यपि हरिभक्ति विलास के जितने भी श्लोक आदि जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के संग्रहित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद दक्षिण देश में रहने वाले हैं और विशेष करके रामानुज संप्रदाय में जितने भी शुद्ध सदाचार आदि है उस शुद्ध सदाचार आदि के ग्रंथ के समस्त प्रकार के श्लोक आदि उन्होंने संग्रह किया और उसी श्लोक के संबद्ध करके हरिभक्ति विलास उन्होंने प्रकाश किया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद और अनेक विशेष करके श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका दिग्दर्शिनी टीका उन्होंने लिखा और हरिभक्ति विलास की टीका उन्होंने भी लिखी। ये समस्त सनातन गोस्वामी पाद के जो है अवदान और वैशिष्ट है। सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार भजन साधन करते थे इस प्रकार 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने चारी दंड सुते थके सपने राधा गोविंद थे केवल मात्र चार दंड काल यानी 96 मिनट केवल मात्र और अपने वाचक क्रिया आदि करते थे
24 मिनट
चार दंड माने 24 केवल 96 मिनट उसमें तो उसमें कभी जब विश्राम करते थे और उनके हृदय में राधा गोविंद प्रकट होते थे। ये समस्त गोस्वामी पाद भजन करते थे एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन जापन करते थे एक एक दिन बिताते थे एक एक रात। चलो महाराज जी कोई एक आचार्य कोई एक वैष्णव वर्णन करते हैं जानते हो सनातन रूप सनातन क्यों वृंदावन के एक एक वृक्ष के नीचे क्यों करते हैं? तो वो आचार्य कहते हैं तो वो वैष्णव वर्णन करते हैं वो उनके आसक्ति हो जाएगा इसलिए वो क्या करते हैं एक एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। शिलो महाराज इस कथा के सुन करके बहुत क्रोधित हो गए बोले ये व्याख्या ठीक नहीं है। जहां जो लोग अपने इतने बड़े बड़े राजपद को छोड़ करके हैं कहां सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के राजमंत्री थे और ऐसे पद के छोड़ करके आ गया और कोई एक वृक्ष के नीचे रह जाए उसकी आसक्ति हो जाए कहते एक वृंदावन के एक वृक्ष के इसलिए रहते थे। शिलो महाराज जी सुंदर व्याख्या किया देखो वृंदावन के सारे वृक्ष क्या सारे वृक्ष कृष्ण लीला की मूर्त विग्रह मानो अथवा कोई बड़े बड़े मुनि साधक ऐसे वृंदावन में भजन करते वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डालर पात पात में राधे राधे हुई। इसी प्रकार भी ब्रजवास भी वर्णन करते हैं वृंदावन के वृक्ष लता ये कोई सामान्य नहीं है नित्य कृष्ण के नित्य लीला के परिकर है। कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे लीला विलास आदि करे विशा विलास आदि की वो साक्षात सच्ची स्वरूप है वो लोग भी कृपा कर सकते हैं दीनहीन होकर के सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद षट गोस्वामी पाद एक एक वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते थे इस प्रकार हा हुतास करके प्रार्थना करते थे और कैसे भजन साधन आदि करते थे ये सब दिखाया। अर्थात वृंदावन के सारे वृक्ष चिन्मय है इसलिए महाराज जी कहते हैं परिक्रमा के समय कोई वृक्ष के ऊपर हाथ न लगाए अर्थात उनकी कोई कष्ट न दे कोई वृक्ष के पत्ता आदि को जो है नहीं तोड़े कोई लता को जो है नहीं तोड़े क्यों ये साक्षात राधा कृष्ण के नित्य परिकर है कृष्ण के विरह में मानो आज वो तड़प रहे हैं। इसी प्रकार श्री महाराज जी वर्णन करते हैं रूप सनातन किस प्रकार भजन साधन आदि करते हैं। उनके भजन साधन की प्रणाली दो है एक बाह्यिक और एक आंतरिक। बाह्यिक रूप में लोग शिक्षा के लिए हा हुतास और कैसे दीनहीन होकर के रहते थे संखाप नाम गान टीवी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदि विजित तत्संतु जिनो चलो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदिन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघु जुगो श्रीजीव गोपाल को। सर्वस्वामी पाद श्रीनिवास आचार्य सर्वस्वामी अष्टक में इस प्रकार वर्णन करते हैं कैसे दिन रात्र दिवा रात्र भजन करते थे और कैसे दिन ही ब्रजवासी के घर में थोड़ा से माधुकरी करके लेकर के आते थे कभू चाना कभू माना कभी भी ब्रजवासी के घर से कुछ भी मांग करके लाते थे और कभी भी वो भी नहीं है। इसी प्रकार दीनहीन होकर के रहते थे और उन्होंने उनका अंतर्नीत हो जाए साक्षात राधा कृष्ण की लीला में लवंग मंजरी है उसी भाव में अंतश्चिंतित देह में और राधा गोविंद के जय भजन साधन करे, जिन्होंने मदन मोहन के जो है प्रकाश आदि की, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के चौबेनी के घर से स्वयं मदन मोहन आकर के रहने लगे, स्वयं जो है सेवा आदि करने लगे। एक दिन की कथा है, सनातन गोस्वामी पाद नित्य प्रत्यह ब्रजवास के घर से साधारण जो है आटा आदि लेकर के उसमें बिना नमक से किसी तरह से और बना करके आग में जला करके और उसकी प्रकार जो है भोग लगा दी थी। एक दिन मदन मोहन कहने लगे, सनातन देखो मैं छोटा बालक हूँ, मेरा गला भी देख सुकोमल कोमल है, तुम ऐसे जो है रूखा सूखा ऐसे देते हो, थोड़ा तो नमक दो। किन सनातन गोस्वामी बात कैसे बोलने लगे, देखो भगवान के साथ कैसे प्रेम प्रति है। काल जैसे वो पंडित लोग महाराज के सुंदर एक कथा बोले, मतलब हृदय गदगद हो गया। देखो जिसके साथ प्रेम होता है, प्रेम तो ही होता है, अपने निजी जन मानते हैं, अपने परिवार के जन मानते हैं, वही यथार्थ प्रेम है। जो वो लोग ने कहा, हम लोग तो महाराज के अपने निजी जन नहीं अपने परिवार के जन मानते हैं। देखो कैसे सुंदर शब्द के द्वारा मान, वास्तव यही है, प्रीति तो ही होते हैं, लौकिक सद्बंध व प्रीति होता है, तभी तो ब्रज में प्रवेश के योग्यता प्राप्त करते। तो सनातन गोस्वामी पाद उसी प्रकार भजन करते और कहने लगे, देखो मुझे थोड़ा नमक दो। और सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, मदन मोहन आज तुम नमक मांगोगे, काल सब्जी मांगोगे, काल और कुछ कुछ मांगते रहोगे, कहां मैं वैराग्य बाबा जी, मैं कैसे तुम्हारे सेवा करूं। मैं जानता हूं तुम्हारे पिताजी नंद महाराज है, महाराज के पुत्र तुम राजपुत्र हो, तुम्हारे पिताजी तो पिताजी के बहुत कुछ है, सेवा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सेवा नहीं, मैं जैसे कर तो ऐसे ही देना पड़े। तब मदन मोहन करके मैं अपने बना लू, कहते ऐसे बना। देखो इसके बाद मदन मोहन अपने ही व्यवस्था कर लिया और विशाल जो है मदन मोहन मंदिर बनाया और कैसे कैसे वो लीलाएं करते हैं भगवान, ऐसे भक्त की साधना जी कैसे कैसे लीला आदि करते हैं। ऐसे करके मैं सनातन गोस्वामी के चरण में अपने पुष्पांजलि देता हूँ और गुरु पाद में कृपा करे ऐसे कभी जीवन में भाव गुरु वैष्णव की सेवा के प्रति लगे। वंशा कृपा सिंधु देवचो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवे नमः।
रामचंद्र अंग्रेजी में बहुत अच्छे এখন মনে হচ্ছে আমি কিছু এই রকম বলেছিলাম, আমি কিছু বলেছিলাম কিন্তু রাধা কৃষ্ণ রাধা কুণ্ড থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।
হ্যাঁ মহারাজ, এই শ্লোকের মধ্যে আছে, আমিও দেখেছি শ্লোকের
মধ্যে বলেছি এখানে যে এই লীলা আছে, আরে উদ্ধব ক্যারি, তারপরে যাবটা তারপরে নিঃশান্ত লীলা,
ওই লীলাটা আমার মনে ছিল, মনে আছে যখন হচ্ছে শ্রীমতী রাধিকা ওই রসই ঘরের মধ্যে রান্না করেন, কৃষ্ণ যখন মাঝে মাঝে যে মিলেন ওই মধ্যে, আমার মনে আছে আপনি 92 আর 94,
আমার মনে নেই
এই নন্দ, এই আমার
যখন এটাকে খুব গীত করে
একবার বিবাদ বন গিয়া থা, যে ইয়াহি পে হুই থি ইয়ে বাত,
লো জলদি করো বিবাদ মত করো, ও সকালে বুঝতে পারবে কুচ কুচ লোক বলি উমা বলতে অধিক লম্বা চওড়া মত কিজিয়ে, জলদি জলদি কিজিয়ে।
Because so many other scriptures. Also, Sanatana Goswami Pad, he had two types of life. One that he was externally performing his bhajan to show all visajak that how should we do. And secondly, from his inner constitutional position, he was serving as Lavang Manjari to Radha Krishna. So his way of serving Radha Krishna and his way of teaching to all of us is really remarkable. He used to go to his brother sometimes, and sometimes Rupa Goswami Pad, he used to come to him. They will all always get absorbed in so many discussions and so many spiritual talks that even Radharani comes and she comes to hear those talks, and in order to hear, she says, I have brought rice, milk and everything. I will cook for you and you keep on talking. So she used to come, Gurudev has explained that Radharani used to come there to hear all those talks, and she was cooking kheer also for them. Also, it is said that Sanatana Goswami Pad was performing his bhajan under different trees. He won't stay more than one night under beneath a tree. Some people say that this is because he was not staying beneath a tree so that he may not get any attachment for those trees. But our Guru Maharaj, he refutes this statement. He says, no. What is the status of Sanatana Goswami Pad? Sanatana Goswami Pad, he kicked away all those opulence which he had. He was minister in the Hussein Shah kingdom. And he left that opulence and he came to Vrindavan. He was not an ordinary person. He was not a person who was prone to get any attachment. He was totally liberated person. So having this fear that, to have this fear that he will get attachment for a tree, no, those trees are not ordinary personalities. They themselves are Muni, or they themselves are those trees who have seen, who have witnessed the pastime of Radha Krishna. So in order to have an association of those trees, he used to go from one place to another place. So these all were the glorification of Matra and in Golok Vrindavan, highest is Vrindavan, and in also from Vrindavan, Govardhan is higher, and among all, Radhakund is highest. But he was saying that sometime it is said, or some places, or at some point it is said, that Nandgram is highest. So Gurudev was saying, no, it can't, where it is said. Then he is quoting scripture also. So once Gurudev spoke that certain point, it is said that Nandgram is also.
Yes, in this way we should try to speak. Oh, Nandgram is also superior like Radhakund in some cases. Very cordially. Understand?
Like, it is superior. Like means it doesn't mean that it can be put more than Radhakund. It is superior. Because so many deep things have taken place.
Thank you. Oh, Aranya Maharaj. Sri Rupa Goswami. You can see it. You can sit there. But in brief, 15 to 20 minutes, not more than.
Om Agyati Marandasya Gyanandana Salakya Chakshur.
तुमको कल ही आना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों से भी देखते हैं कि कुछ मिल जाए नहीं तो हम देंगे पहले देख ले ये कितना इन लोगों ने दिया है फिर और कुछ बाकी है उससे लेकर के फिर तुमको और आज हो जाएगा तो आज ही दिला दे
thousands and thousands of times at the lotus feet of Asmadeya Paramaradhyatama Guru Pada Padma Om Vishnu Pada Ashtodara Sata Sishimad Rupanu Gatharivarya Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, after my Sastang Dandavat Pranam thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Varga and after my Pranam to my Pujaniya Guru Jana Ananya Chidandi Padgan and all Vaishnavas and Vaishnavis. So Srila Gurudev Musli ordered me to speak a few words in glorification of the lotus feet of Sri Rupa Goswami Pad. One Vaishnava poet, Sri Madhav Das, he has explained, Jan Kali Rupa Sharira Nadharata Tan Braja Prema Mahali Dikutrika Kona Kapata Udgharata. The meaning is that if Srila Rupa Goswami Pad had not appeared in this world in the age of Kali, then even though Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nahyanya, Radha Bhava Duti Sivalitam Loni Krishna Sarupam, Krishna appeared with his sentiment and complexion of Srimati Radhika to distribute Raja Prem. Charibhava Bhakti Diya Nachamu Bhavan. And among the moods of Raja Prem, especially to give the service of the lotus feet of Srimati Radhika. So he bought that Raja Prem Mahanidhi, the great treasure of Raja Prem. But Kutrika, it was inside an iron chest. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave the key to that iron chest to Srila Rupa Goswami Pad. So unless Srila Rupa Goswami Pad had opened the door of that Kutrika, then the world would never have known what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give. When did Sri Chaitanya Mahaprabhu give Srila Rupa Goswami Pad the key to that Kutrika? Where? When they met together at Prayag. At that time when they met together, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Srila Rupa Goswami Pad, Para para sunya kami bhakti rasa sindhu tomai chakaiti tai kaye kabindu. Oh Sri Rupa, the ocean of bhakti ras is endless. It has no shore in any direction. It has no bottom. It is so vast and unlimited. And just to make you understand the nature of this ocean of bhakti ras, I will describe to you but one drop. Srila Gurudev explained that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he took the finger of Rupa Goswami and he dipped his finger into the endless ocean of bhakti rasa and then he put it in his mouth. Taste this. So there was one drop on the end of his finger and he tasted it. And from that taste, from that one drop of the endless ocean of bhakti rasa, Srila Rupa Goswami Pad, he manifested Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Ujjwala Nilamani, Vidagna Madhav, Lalit Madhav, Stava Mala, Hamsa Dut, Udhav Sandesh, Govinda Virudavali, many, many beautiful branches. What was that? Only from the drop of that ocean. So we can just imagine how vast is that ocean. That ocean is Srimati Radhika's Madanakya Mahabhav. And one drop was manifest in the world in the form of the books of Srila Rupa Goswami Pad. So, Sri Kavi Karnapur Goswami, he explains. Brindavaniyam rasakeli vartam kalena luptam nija shakti utka sancharya rupe vidalot punasa kabo vidho prariva loka shishtim. Just as when the universe is annihilated, in the next day of Lord Brahma, Bhagavan inspires Brahma how to create, and he recreates the entire material manifestation. In the same way, Radha and Krishna came to this world. At that time, Rasa Keli Vartam, Brindavaniyam Rasa Keli Vartam. Beautiful discussions of the pastimes of Radha and Krishna's Rasa Keli. They were abounding. But Kalena Luptam, by the force of time, all of this katha had been lost. So, Nija Shakti Utka, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who kept his Shakti in the heart of Srila Rupa Goswami and inspired him to manifest all the Vrindavaniyam Rasa Keli Vartam, the beautiful discussions of the pastimes of Sri Sri Radha and Krishna. An inspiration of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Some people, they may put for an argument, but Rupa Goswami knows everything. He knows everything already. So why will he need to be inspired by the power of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Srila Gurudev's vichara is very profound. He said, yes, he must be inspired by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why? Because this frame is very high and separation is very high. See, Shukadeva Goswami cannot utter the name of Radha, otherwise he will face for 6 months. So how is it that Srila Rupa Goswami can write and all these very deep and intimate loving moods to Radhika? So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he empowers Srila Rupa Goswami with the dharya dharan shakti, with the power to hold his patience, that he would not faint and become unconscious while manifesting Vrindavaniyam Rasa Keli Vartam. So Srila Gurudev explained, Srila Rupa Goswami Pad is not only the prominent guru in our entire sampradaya, by which we are all proud to aspire to be, Rupa Nusa, the followers of Rupa Goswami. But rather, he is the guru of every sampradaya. Because what he has written, what he has explained, no one knew before. Someone may say, oh, but he has taken so many things from the Natya Shastra, of Bharat Muni, from Sitya Darpan, and from these shastras, he's taken from there. No. Oh, the original Rasa Katha, Rasa Taka, is from the transcendental world. So even though Srila Rupa Goswami Pada appeared in this world, after Bharat Muni, after the Sri Krishna, the author of Saitadarpan, still, his katha is original from there. Someone may say that Srila Gurudev explained. Someone may say Srila Rupa Goswami has written his poetry in the same style like Srimad Bhagavatam. But actually, Shukadev Goswami, hearing the poetry of Sri Rupa Manjari, has spoken Srimad Bhagavatam in the style of Srila Rupa Goswami. So, Srila Goswami is such an incredible person. Therefore, Sri Madhav Das, he explained that Nirachira Hansana, Pana Vidayan, Kona Pratakuri Payata, Kosa Machaji Bhaji Vrindavana, Kosa Bhaganta Virachita. If Srila Rupa Goswami had not appeared in this world, then who would have been able to discriminate on all the different types of bhakti? Just as a swan can separate a mixture of milk and water, so similarly, Srila Rupa Goswami, he explained everything about bhakti from the very beginnings of our spiritual life. He explained the difference between sadhan bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. In the realm of sadhan, he explained the difference between Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. He explained the difference between Aishwaryamayi Bhakti and Madhuryamayi Bhakti. He explained the stages of Rati, Prem, Sneha, Man, Pranaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rudabhav, Ali Rudabhav, Modan, Mohan, Divyunmad, Chitrajapa, Udvir, and Madanakya Mahabhav. Who could have discriminated between all of these stages? He explained the difference between Sambandha Rupa Bhakti and Kama Rupa Bhakti. And within Kama Rupa Bhakti, he explained this Kama Bhakti has two types. What is that? pavitrishna kama rupa anugamini sambho gichamai tatrak bhavi jatneti sarvaha. What is kamanuga bhakti? Kamanuga bhakti is the intense thirst to follow kama rupa bhakti, and it has been divided into two parts, sambho gichamai and tatrak bhavi chamai. What is that? Oh, Srila Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu, he has given the definitions there. He said, Kali Tatkarya Vatyaiva Sambhogi Chamayi Bhavet Tat Tat Bhavatmita Tasam Bhava Madhurya Kamita. Bhava Madhurya Kamita, what is the meaning? Sambhogi Chamayi means, oh, Viliza Kali Tatkarya Vatyaiva. Viliza to meet with Krishna and take part in the Leela of Rati Kali, these pastimes. And Tat Tat Bhavi Chamayi Tadbhave Chatmika Thasam Bhava Madhurya Kamita, the intense desire to relish the sweetness of the moods of one's Naika and one's Yudeshwari. This is the meaning of the Tatadbhavi Chatmika. This Tatadbhavi Chatmika is called Sakhi Bhav. But this Sakhi Bhav is divided into five types. Paramprasna Sakhi, Priya Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, and Sakhi. Among those who are Tatadbhavi Chamayi, that is Sakhi Bhav. Some have one special mood. It is called Bhava Lasarati. Srila Rupa Goswami Pad also gave this definition. Sanchari Shat Samonava Krishna Ratya Suridriti Adikam Pushamana Chet Bhava Lasa Iteriyate. What is Bhava Lasarati? Very special contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the Anapita Srim Chirat Krunayavatina Pralo Samarpamitam Unnat Ujjvarasam. So it was never given before. Sachari Satsamonava. If two gopis, they have sajatiya vasana, similar desires to each other, then naturally friendship comes between them. This is called suridrati, friendship. If this suridrati will become more intense, it becomes higher than their Krishna rati. At that time, adikam becomes more, and pushyamana, it is nourished by Krishna rati. At that time, this is called Bhavalas. This Bhavalas may appear in Lalita Shaka Chitra Champakalata. This Bhavalas can appear even in Srimati Radhika. Srila Rupa Goswami Pad explained, once Radhika was performing pastimes with Krishna on the top of Govardhan Hill. This is Sanchari Bhava Prakarnam, verse 100, Ujjvala Nilavan. On the top of Govardhan Hill, Srimati Radhika was performing pastimes with Krishna. At that time, she saw that perspiration was on the brow of Lalita Sakhi. And turning away from Sri Krishna, she began to wipe the perspiration from the brow of Lalita Sakhi. This is an example of Bhavalas in Srimati Radhika, where her Suridrati for Lalita became in a superior position to her Krishna Rati, but just for a moment. Just for a moment. And again, her attention came back to Krishna. So for Radhika, Lalita Vishaka, Chitra Champakalata, and others, they may have Bhavalas Rati, but for them, what is it?
Bhavullas.
Bhavullas.
No. Bhavullas.
Bhavullas.
Bhavu.
Bhavullas.
Bhavullas.
Bhavullas. So, Radhika, Lalita, Vishaka, Chitra, Champakalata, they can have this mood. But for them, is it Stai Bhav or is it Sanchari Bhav? This is the question. Srila Jiva Goswami Pad, in his commentary on this verse of Ujjvala Nilamani, there he explains, Natasya Sancharitva, Natasya Staitva. Not Sanchari Bhav, not Stai Bhav. Why? Because the Bhavallas is nourished by Rati, but actually the Sanchari Bhav always nourishes Rati, so it cannot be called Sanchari Bhav. And at the same time, it cannot be called Stai Bhav because it's not permanent. But those gopis in whom this Bhavallas is their permanent mood,
गुड एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग उद्धव क्यारी में गए, वहां पर उसको उद्धव संवाद का स्थान भी कहा जाता है। वहां पर उद्धव जी गोपियों की वार्ताएं सुने और एक मधुकर को देख करके राधिका जी को जो भाव उत्पन्न हुए, उद्धव जी सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भाव हमने जीवन में नहीं सुना। और फिर कृष्ण के पास में लौटे थे। अभी भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी संक्षेप में इसका वर्णन करें। तुम्हें बसे जाए, बसे बोलो।
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरु पाद पद्म में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय त्रिदंड उपाधिगण, पूजनीय वैष्णव वृंद, सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आज हम लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा में प्रातः काल प्रेम सरोवर से संकेत होते हुए नंद खीड़क, उद्धव क्यारी आदि नंद गांव के आदि आदि स्थानों का दर्शन किया। वहां की कथाएं विस्तृत रूप से वैष्णवों ने वर्णन किया है। उद्धव क्यारी जहां पर पानी होने के कारण हम लोग आज जा नहीं सके, नंद गांव ऐसी एक लीला स्थली है जहाँ कृष्ण के तथा ब्रजवासियों के नित्य निवास स्थान माना जाता है। नंदगांव को ही केंद्र करके सभी लीलाएं हैं, क्योंकि बिना नंदगांव के नंद बाबा आदि ब्रजवासियों के मूल केंद्र बिंदु न हो तो और लीला स्थलियां कैसे चले। इसलिए और वनों में जो जो लीलाएं हुई हैं, लीलाओं के रस विशेष से महत्ता है, परंतु मिलन और विरह दोनों की उपस्थिति है नंदगांव, जहां पर प्रेम की दो पहलू हैं, एक मिलन दूसरा विरह। तो प्रेम सरोवर से कथाएं शुरू हुई तो वहां देखा जाता है नंदगांव में जितने भी गोस्वामी पादों ने लीलाओं का वर्णन किया है, अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन, वे सभी लीलाएं अधिकांश रूप में नंदगांव को केंद्र करके है। राधा जी का जावट से ब्रज नंदगांव में आना, भोजन पकाना इत्यादि सभी कुछ वहां पर देखा जाता है। कृष्ण के साथ राधा जी का मिलन आदि वर्णना ये सब देखे जाते हैं। इस प्रकार लीलाएं हुई। जबकि मथुरा से कंस ने अक्रूर को भेजा, ब्रज में जितने भी असुर गए आज तक कोई लौट के नहीं आया, किसी तरह से कैसे भी षड्यंत्र करके कृष्ण बलराम को लाया जाए, और लाने का उपाय उनके उनके ही ऐसे ही हितैषी व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए अक्रूर को बुलाया और उसे बुला करके मंत्रणा करके उसको भेजा गया। नंदगांव जब आए, कृष्ण विवाह के दिन से ही कंस के द्वारा निर्यातन और जेल में पड़े पड़े इतना कष्ट हो बच्चे अब उस बच्चों को मार डालना सब प्रकार के निर्यातन की बातें सुना करके कृष्ण बलराम को प्रेरणा दी गई जिससे वे मथुरा को जाए। कृष्ण बलराम ने भी निश्चय कर लिया प्रतिज्ञा कर ली दूसरे दिन सुबह जाने का और कंस को मारने का। ये सभी बातें भी हुई जो कि कृष्ण बलराम दूसरे दिन मथुरा को प्रस्थान और मथुरा में कंस का वध हुआ देव के वसुदेव को जेल खाने से छुड़ाए ये सारी कथाएं भी हुई है। इसके पश्चात कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ कृष्ण बलराम का वे उज्जैन में गए देव के वसुदेव ने उनको भेजा कि दूर भेज दिया जाए तो ब्रजवासियों को भूल जाएंगे और फिर यहाँ रहना संभव होगा इसलिए कृष्ण बलराम को दूर भेजने का मन बनाया और उनको उज्जैन भेजा। गुरु शांतिपनि के वहां जा करके 3 महीने तक जो कि 64 दिन में 64 कलाएं विद्याओं का अध्ययन किया शिक्षा ग्रहण। इसके पश्चात गुरु दक्षिणा के रूप में मृत पुत्र को लौटाया
बहुत लंबा कर रहा
और जबकि मथुरा आए मथुरा से ब्रजवासियों का स्मरण किया तो उस समय कृष्ण विरह में अधीर हो उठे तब उन्होंने उद्धव को भेजा। गच्छद्धव ब्रजम सौ पितृणाम प्रतिमा हो जो कि उद्धव जी को यहाँ पर भेजा उस सोने के रात में जो रात अक्रूर लेकर के आया था उसी रात में आए और यहाँ आकर के ब्रजवासियों के विरह दुख को देखा। कृष्ण के विरह में 3 महीने तक अन्न जल बिना ग्रहण किए गोपियां वन में पड़ी हुई हैं। जितने भी ब्रजवासी जन सभी उसी प्रकार से कृष्ण की प्रतीक्षा में विरह में अधिक है। नंद बाबा यशोदा माँ की वह स्थिति है जसमती नंद अंध समवई थई सासे न उठई पास जो कि रोते रोते अंधे हो गए। यशोदा मैया तो मुंह से कपड़े नहीं हटाया जब तक कृष्ण नहीं आएंगे जब तक उनको नहीं देखूंगी तब तक दुनिया के और कोई चीज मुझे नहीं देखने का है न किसी से बोलने का न कुछ खाने पीने का न कुछ सुनने का न देखने का ये स्थिति बनी। ऐसी ऐसी ब्रज की स्थिति बनी विरह की स्थिति जहाँ पशु पक्षी सब खाना पीना छोड़ पक्षी भी पूजन नहीं करते भावे फूलों में नहीं बैठते गौए घासे नहीं खाते न चैनी को जाती है बछड़े भी दूध पीना बंद कर दिए। इस प्रकार एक विरह की चरम स्थिति जिसको श्रीमद् भागवत की टीका में लिखा गया है श्वेति कृता सर्वे विरह में वो स्थिति हो गई सब श्वेत वर्ण के जानी विराम ऐसी वीरानी की स्थिति बनी कोई भी सांत्वना देने वाला कोई भी धैर्यवान देने वाला नहीं रहा सभी विरह में अधिक। उद्धव जी आए एक स्थिति को देखा नंद बाबा की स्थिति से चमक उठे तो और की बात ही क्या यशोदा मैया से बात करने को साहस नहीं हुआ दूर से प्रणाम किया केवल नंद बाबा से रात भर बातें की जबकि नंद बाबा ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव तुम कहते हो कृष्ण परमेश्वर पर ब्रह्म परंतु मैंने न तो कभी माना न सोचा और न हमने विचार किया। कृष्ण को मैं जानता हूं कि अपना बालक है आज तुम्हारे परमेश्वर को पा करके मैंने खो दिया तो मेरे जैसे दुर्भाग्य और कौन होगा। इस प्रकार रोते रोते विकल हो गए उस समय नंद बाबा कृष्ण के बाल लीलाओं की सारी स्मृति उमड़ आई तो एक एक बातें सुनाने लगते जो कन्हैया मेरे गोदी में बैठता था मेरे मुंह से चबाए हुए पान को निकाल करके खा जाता था भूख लगने पर घर कैसे हो गया, हम उनके बिना कैसे जिए, क्या इस जीवन के अंतिम क्षण में जब इस शरीर से तन से प्राण निकले, क्या उनके सुंदर मुख कमल सुंदर नाचेगा, उनके मंद मुस्कान उनके चेहरे कभी एक बार दर्शन करने को मिलेगा, इस प्रकार विरह देखूंगे। ये करके सारे बातें सुनाते हैं, हजारों विपत्तियां आई, जितनी जितनी विपत्तियां सब विपत्तियां चली गई, कुछ भी परेशान नहीं, और सारे विपत्तियों से हम मुक्त हुए। आज उनके विरह रुकी, इस विरह समुद्र ने विपत्ति में फंस करके इससे हम कैसे निकले। घर का ये गीत ये झूल काल भी कृष्ण का स्मरण दिलाता है। ब्रज का ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसे कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे नहीं गए हो, जिस स्थान में नहीं गए। आज हम कैसे बिताए, कैसे उनको भूले, हमारे लिए बड़ा ही भारी है, कष्टकर। जीवा दिन रात रो रहे नंद बाबा विरह में बैकुल, उनको सांत्वना देना उद्धव के द्वारा संभव नहीं हुआ। जिनके ज्ञान की गठरी वृंदावन की झाड़ियों में खुल गई, और यमुना जी कौतल करती हुई हंसती हुई बता दिया, उद्धव तुम ब्रज में जा रहे हो ज्ञान का संदेश लेकर के। उस ज्ञान के संदेश से कुछ भी सांत्वना नहीं हो सका, केवल प्रणाम किया, रात भर बैठे बैठे सुनते रहे। दूसरे दिन ब्रज गोपियों के पास में पहुंची, जबकि ब्रज गोपियां दूर से देख करके बोली कि अरे ये कौन है, लगता है कृष्ण का कोई संदेश वाहक दूत है, ये और कोई आया, वही कालक्रोर अक्रूर तो नहीं आया, सोने का रथ कैसे आ गया। इस प्रकार गोपियां जब सामने आई, देखा अरे देखने में तो कृष्ण जैसे, पर कृष्ण तो नहीं है, ये तो कृष्ण का कोई संदेश वाहक उनका कोई अनुचर जरूर। तब गोपियां उनसे बात करने लगी, बोले भाई आप यहाँ आए कैसे, आप रास्ता भूल करके आए क्या, आप सांत्वना देने आए तो पिता माता के पास में जाइए, वे आपको देख करके भूल जाएंगे, खुशी मनाएंगे, उनको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मुनेर अपि दुष्टजम, जो मुनियों के लिए दिशा दुष्ट है, तो आज उन्होंने एक ही दिन में सारा बंधुत्व मित्रता संबंध सब कुछ तोड़ लिया है, हमसे तो उनका कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं, इसलिए यहाँ क्यों आए, हमसे कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके पास जाओ, पिता माता को सांत्वना दो। इस तरह से कहते कहते गोपिया जो कि विरह में अभी कहती है कि हे उद्धव, संसार में प्रेम दो प्रकार से होता है, एक निरुपाधिक प्रेम, दूसरा है सोपाधिक प्रेम। सोपाधिक प्रेम स्वार्थमय होता है, जिसमें स्वार्थ है उस स्वार्थ को ही अपना अपना देखता है, उसके लिए प्रेम होता है। निरुपाधिक प्रेम मिलना बड़ा कठिन है, फिर भी हमने कौन सा दोष, हमने तो बचपन से ही कृष्ण को प्यार किया प्रति, हमारे जीवन में कौन सी कमी, कौन सा दोष था जो कृष्ण आज हमें छोड़कर चले गए। संसार का प्रेम कैसे, जब तक पैसे हैं तब तक प्यार प्रति है, संबंध है, आत्मीयता है, मित्रता है, जब पैसे खत्म हो जाता है बस कोई देखता नहीं है। इस प्रकार पुरुषों का स्त्रियों में, स्त्रियों का पुरुषों में अपने अपने स्वार्थ मतलब के लिए होता है। फूलों में भवरा तब तक बैठता है एक बार जब तक मधुपान नहीं करता, अतिथि ब्राह्मण विप्र वे जब तक दक्षिणा नहीं मिले, जब तक भिक्षा नहीं मिले, तब तक प्रतीक्षा करेंगे, और मिल गया तो बस एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। छात्र गुरु के पास तब तक होता है जब तक उनसे शिक्षा पूरी नहीं होती। इसी प्रकार संसार का प्रेम, गोपियां अपनी ओर उन बातों को टालते हुए बोले कि उद्धव
के बाल बल्ल और कैशोर की लीलाओं का स्मरण करती हुई गोपियां विरह में अधीर होकर के रोने लग
गई। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा और लगाओ। गोपियां बोली, जो उद्धव ये बतलाओ, ये हमारा प्रेम तो ऐसा स्वार्थ में नहीं था। हम घर बार स्त्री पुत्र परिवार पति सबको जलांजलि दे करके तुम कृष्ण के चरणों में गई थी, सर्वस्व देकर। और कृष्ण का भी प्यार हमने देखा था, उस प्यार में कोई संसारिक कर्म लिप्सा इत्यादि नहीं थी। फिर हमारा यह प्रेम कैसे टूट गया, बतला सकते हो? उद्धव जी इसका उत्तर नहीं दे सके, देने लायक भी वो नहीं थे ये उसका उत्तर। चलो
उस समय ब्रज गोपियां कृष्ण के किशोर बल बल्ल की लीलाओं का स्मरण कर रोती हुई उन लीलाओं को गाती जा रही है और रो रही है। इस प्रकार ब्रज गोपियां कुछ देर तक रोती रही। रोने के पश्चात बोले कि हे उद्धव, जब तुम आए हो हम लोगों की क्या स्थिति देखोगे? देखना है, चलो राधा जी की स्थिति को तो देखो, वो कैसी पड़ी हुई है। जो की बिरहिणी राई बिरह जर 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 चौथ के बिरह खुतार। बिरहिणी राधा जो की उनको फूलों के सेक में सुला दिया, फूलों के साथ में मिल करके उसका उनका शरीर एक हो गया है। रुई लेकर के गोपियां देखती है श्वास चल रहा है या नहीं, उनके हाथों में पल्स चल रहा है या नहीं। इस तरह की स्थिति है जो कि दिव्य उन्माद में पड़ी हुई है, जो कि भावों की पराकाष्ठा महाभाव और महाभाव से रूढ़ और रूढ़ से अनिरूढ़ महाभाव और उसके ऊपर में जाकर के दिव्य उन्माद भाव की स्थिति का वर्णन होता है, जिसमें चित्र जल को महाभाव जिस समय उनको कोई भी बाहरी स्थिति का पता ही नहीं, अंतर्दशा में डूबी हुई है। और अंतर्दशा में कभी कभी एक आध शब्द मुंह से निकलता है, इस प्रकार क्या बोल रही है उनको भी पता नहीं, और इस प्रकार दिव्य अनुवाद में खोई हुई, इसको कहा जाता है चित्र जल, जो कि भाव की स्थिति में वर्णन किया गया है। स्वसंपित दशा जावल आश्रय वृत्ति, केवल हृदय में अनुभव किया जाता है, बाहर व्यक्त नहीं कर सकते। कोई साधक साधिका हो या सिद्ध परिकर हो, जब कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है उस समय उसको भाव कहा गया है। कोई भी भाव अपने द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, भावी वहां पर संचरित होता है और भावी कंट्रोलित होता है। ऐसी दशा जब हो जाती है तब भाव होता है और उसके ऊपर में महाभाव।
क्या कहा? कंट्रोलित होता है तो एक ही बात हुआ,
एक साधक के द्वारा कंट्रोल करना, अपने भाव को छिपा लेना, भाव को गोपन करना, भाव को संयमित करना।
किसको साधक किसको कह रहा है?
चाहे कोई भी उन्नत साधक होता है,
उन्नत साधक साधक में ये भाव नहीं है। प्रेम के बाद में साधन की स्थिति खत्म हो जाती है, खूब संभल करते
हो। जहाँ पर भाव अपने द्वारा कंट्रोलित होता है, अर्थात भाव स्वयं ही संचरित होता है, स्वयं कंट्रोल
नहीं, भाव कंट्रोल करता है, ऐसे बोलो।
भाव कंट्रोल करता है,
हाँ। भाव कंट्रोलित नहीं होता,
कंट्रोल करने वाला नहीं होता।
भाव सबको उस समय में, प्रेम ही सब लोगों को कंट्रोल करता है, इस तरह से बोलो।
जो भाव का ही कर्तृत्व होता है, हाँ। तो
इसलिए प्रेम प्रयोजन है, वही भाव प्रयोजन है। वो किसी से कंट्रोलर, राधा कृष्ण कंट्रोलर भी नहीं है, वो भाव ही कंट्रोल करता है दोनों को।
तो इसलिए कहा है इस भाव की पराकाष्ठा है महाभाव, और महाभाव से ऊपर में रूढ़ अनिरूढ़ दिव्य उन्माद में पहुंचता है। तो उस समय की जो विचित्र स्थिति है, टीकाकारों ने हमारे गोस्वामी पादों ने कहा, इसका वर्णन करना बड़ा कठिन, कोई छू भी नहीं सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता है शब्दों के द्वारा कि 10 प्रकार के चित्र जल्प है, संजल्प आजल्प विजल्प अभिजल्प अनुजल्प इत्यादि। तो उस समय कहा गया है कि उस दिव्य अनुवाद की स्थिति में राधा जी वहां पर पड़ी हुई,
जबकि उद्धव जी गए वहां, उनको दूर से प्रणाम करके आकर के बैठ गए। गोपियां सब चुपचाप बैठी। ऐसे समय में ये काला भौर आया, उड़ता हुआ गुनगुन करता हुआ राधा जी के चरणों में मानो बैठने को जाता है। और ऐसे समय में राधा जी अंतर्दशा में डूबी हुई है और वहीं से देख रही है कि कोई काला भौर आया है और वह मेरे चरणों में बैठ करके मानो मुझको मनाने जा रहा है। ऐसी स्थिति में दीपोन्माद में राधा जी वर्णन करती है,
थोड़ा सा यहाँ ये कहो, ध्यानती कृष्ण संगम।
तो उस समय
भौरे को देख करके ध्यानती कृष्ण संगम, कृष्ण तो बिना किसी महिला के गोपी के अतिरिक्त रह नहीं सकते या किसी भी महिला के, वो जरूर कृष्ण मथुरापुरी में जादों की पत्नियों के साथ में अंग संग इत्यादि कर रहे हैं। इसको सोच करके बड़ा उनको क्रोध आया, वहीं से ये मधुप आ रहा है, इसलिए क्रोधित होकर के उस मधुप से कहने, मधुप
मधुप के नवबंधु मापिसांग निष्ठपत्रा मुझे मिलुली तो माला तुम तुम सत्रु भीरना बहुत मधुपति मारिनी नाम सत प्रसादम जदु सरसे मिरंबम जस्त दूतस्तमित्रिक। हे मधुप भारे तुम कपट के बंधु, वो जैसे कपट है वैसे तुम भी कपटी हो, क्योंकि समान समान में मित्रता होती है और तुम दूध बन करके आए हो, दूधों से ही परिचय मिलता है कि देश का राजा कैसे। जबकि जदु सदस्य विरम्बम, जदु सभा में जाने पर ही उसकी विडम्बना होती है, जब हंसी होती है तब उनको पता चलता है, उससे पहले उनको भी पता नहीं। क्यों? दिन रात मधुपान करते करते मरते, जैसे तुम मरते हो। तुम तो भौरे हो, दिन रात मधुपान करते हो, जैसे मधुपकित्री सपना कुछ बिलुली तो माला तुम तुम शत्रु की। मथुरापुरी में बहुत सी नागरिया है, उनके साथ जब की कृष्ण का मिलन होता है, उनके वक्षस्थल की जो माला में कुमकुम है, उस कुमकुम के कुमकुम को लगा करके तुम आया है यहाँ पर मनाने के लिए, किस वेशभूषा में आना चाहिए यह भी तुम्हें पता नहीं, और सभा में जाने लायक नहीं है, बात करने के लायक नहीं हो, तुम तो भौरे हो, तुम्हारे प्रभु भी वैसे हैं। जबकि सभा में पहुंचते तब उनकी वही स्थिति बदली, जो कि मनुष्य दो पैर वाले होते और पशु का चार पैर होता है, तुम्हारे छह पैर। तो पशु से तुम गया लिता हुआ है, बुद्धि तुम्हारी मारी गई है, किस प्रकार से मालिनी को मनाना होता है ये तुम्हें भी पता नहीं, तो किस लिए आए हो, क्यों बार बार ऐसे गाते रहते हो, तुम्हारे गुणगान हमने बहुत सुन लिया, तुम्हारे प्रभु की वार्ता हम सुनते सुनते हम थक चुके हैं, और तुम्हारे प्रभु की वार्ता हमने खूब सुनी है, वो भरी भारी लक्ष्मी जी है, वो बार बार थक करके भी जाती है और उनकी बातें सुनती है।
भौरे ने कहा, अरे ऐसी देवी जी ऐसा मत कहिए, कृष्ण जैसा और कौन पतिव्रता धर्म को पालन करने वाला होगा है? और उसको आप ऐसे लक्ष्मी जैसी पतिव्रता नारी भी कृष्ण पर मुग्ध होकर के अपने को निछावर कर देती है, उसको आप ऐसे ऐसे तैसे बुरा भला कह रही, ये तो उचित नहीं। तब गोपियां कह रही,
गोपियां कहती है कि भौरे इस प्रकार तुम क्यों आया, भन्नताम अन्न वार्ता कोई दूसरी बात बताओ, ये तुम्हारे प्रभु की बातें सारी पुरानी हो गई है,
जिनके लिए हमने घर छोड़ा घर छाड़ा और आज तक घर में लौटी नहीं, उसकी बात हमें मत कहो, दूसरी बात कहो।
तो उनके लिए हमने
विसर्ज श्रीपादम बोलो, विसर्ज श्रीपादम वेद महम चातुकार और न बिन सस्ते डॉक्टर मुकुंदा न तब मृगोरी वो कपिल।
तो इस प्रकार हमसे मत कहा करो। तो भौरा कहता है कि हे स्वामिनी जी, हमारे मोस तो स्वाभाविक रूप से लाल वर्ण का है, हमने तो कोई कुमकुम नहीं लगाया, ना ही हम कहीं बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी बातों से हमें कोई विश्वास नहीं है, बार बार तुम इस प्रकार चाटुकारी बातों को मत सुनाओ। तुम वहाँ पर जाओ मथुरापुरी में, मथुरा की नागरियों को सुनाना, वे तुम्हें खुश हो करके तुम्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हें दान दक्षिणा देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। आज तुम्हारे प्रभु ने हमें ऐसे घर ऐसे बनाया कि आज हमारा सारा घर बार छूट गया और सबका संबंध छूट गया, सारी मित्रता छूट गई। आज हम बन के भिखारी नहीं बनी, हमारे पास मुट्ठी भर छोला भी नहीं जो हम तुम्हें खिलाए और कुछ दे। तो इसलिए तुम जाओ और अधिक बात मत सुनाओ। बात क्या बताओ, तुम्हारे प्रभु की बातों को कैसे कैसे हम भी तो थक गए हैं।
सब चौपट हो गया एक शब्द के द्वारा। और जैसे जितने काले हैं और जितने कालों का संवाद है, सब ऐसे ही निष्ठुर निर्दयी छली एवं कपटी है। ये भी ऐसा, ये काला भी वैसा ही है, अंतर बाहर का काला। उन्होंने कहा, तब उसने कहा, किसने, अरे वो भौरा, यदि ऐसी ही बात है, ऐसा ही निष्ठुर निर्दय और सब दोषों से युक्त है तो उसकी बातें क्यों करती हूँ, छोड़ दो। तब फिर क्या,
इसलिए उस स्वयं से काले से कोई जरूरत नहीं है, जबकि जन्म जन्म के ठग है और इतने ठगी करते हैं, छल कपट करते हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं। तो कैसे
जन्म 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 तक कौन कर रहा है नहीं ऐसा मत कहो, वो जब जितने काले हैं वैसा ही करते हैं। वो ये मत लगाओ जैसे कृष्ण ही बामन हुए, कृष्ण ही राम हुए, ऐसा मत कहो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तक फिर वो भगवत्ता उनको जान ली।
तो इस प्रकार जितने काले हैं सब ठग हुआ करते।
अच्छा,
तो थोड़ा सा ठीक
है,
क्या करो उद्धव,
यानी
हे भौरे, क्या कहो जो आज उन्हें भूल नहीं पाती। उन्होंने तो छोड़ दिया पर उनकी कथाएं हमें नहीं छोड़ी।
हाँ, थोड़ा सा दे दूं मैं बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा सुधार हम जो कहते हैं उनमें बिगड़ना मत, जो बीच में इंटरफेयर करते हैं उसे सीखो तुम लोग। हमारे नहीं रहने पर भी तुम लोग एकदम निर्भुल भाव से बात कर सको, ये सब एक्सप्लेन। भौरा बोला
कान खोल करके
की पूछे,
बोले बोले कान खोल करके सुनो,
का के पूछे और माँ बोलते पाए
So much Hindi,
not
English.
Eh? English. Oh. Not English. English, Arany Maharaj and...
Bon Maharaj.
What? Damodar. They will explain.
Srila Gurudev English.
No, my English is very poor and very broken. No, no, no. Let me speak in Hindi. Radhika. उस भौरे का यह प्रश्न सुनकर उन्हीं की चर्चा क्यों कर रही हो, विवश है, उनको छोड़ सकती है, वो हमें छोड़ सकते हैं, किंतु हम उनके प्रसंगों को हम नहीं छोड़ सकती, उनकी कथाओं को हम नहीं छोड़ सकती। केवल मेरी बात नहीं, विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी बातें छोड़कर सुन करके विचलित न हो जाए। पति सुने तो इस पति प्रथा नारी को छोड़ देता है, स्त्री यदि सुनती है तो अपने पति को भी छोड़ देती है, बेटा सुनता है तो बाप को छोड़ देता है, और बाप है तो बेटे को छोड़ देता है, और सारे वृंदावन में जैसे पंखी डोलते रहते हैं, इधर अपना कोई बसेरा नहीं, रैन बसेरा, कोई घर बार नहीं, ऐसे सुन करके ऐसे विरक्त हो जाते हैं कि वृंदावन में आकर कह रहते हैं राजा नरोत्तम ठाकुर जैसे राजा के लड़के, रघुनाथ दास गोस्वामी राजा के लड़के जैसे, और कैसे वैराग्य के पूर्ण रहते हैं। उस समय में अपना खाते नहीं है, न कुछ करते हैं, दिन रात रोते हैं, घर वालों को भी रुलाते हैं, या वृंदावन के पशु पक्षी भी ऐसा ही करते हैं, कोई रैन बसेरा कहीं रात में कहीं भी ठहर जाए। ऐसे हमारे साथ में सुनो, ये सब जितने ब्रह्मचारी सन्यासी आए हैं, अच्छे अच्छे घरों के लड़के थे, जब हमारी बातों को सुन करके आए, तो यदि किसी महापुरुष के बातों को सुन करके आएंगे तो कैसा नहीं हो जाए, घर को छोड़ देना सहज बात हो जाएगी। उनकी कथाओं में ऐसा कुछ विष है। देखो बहलिया जैसे विष बुझाए हुए बाणों को लेकर वन में जाता है, और जाकर के हिरणों को अपनी मधुर बंसी की तान से बुला करके उन्हें मार डालता है। तुम भी, तुम्हारे प्रभु भी ऐसे ही विष भरे बंसी की तान से और अपने सौंदर्य माधुर्य से हमारा हृदय निकाल दिया। ऐसा बाण बेदा जो उसका विष लगा जो अब तक उतरता नहीं है। देखो जब इस प्रकार से कठोर भाषण करने लगी तो भौरा ने जिन्हें कहा एक मिनट के लिए चला गया, तब ये विकल हो गए। ओहो, मैंने तुझसे किस प्रकार का समाचार तो पूछा नहीं, और वो चला गया। वो जरूर जा करके अपने प्रभु को कहेगा मथुरा में, जो हम लोग गए आपकी बात भी नहीं पूछा, हमें कोई समाचार नहीं पूछा। ओ, इतने में वो भन भन करता हुआ फिर आ गया। ओहो, आ गए, हमारे प्रभु ने तुमको भेज दिया पुनः हमारे पास में। अच्छा बतलाओ तो, कुशल तो है वहां पर, कुशल है सब प्रकार का। कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, सुना था जो संदीपनी मुनि के घर में गए थे। क्या वो कभी हम सखाओं का स्मरण करते हैं, अपने पिता नंद बाबा, अपनी मैया यशोदा का स्मरण करते हैं? क्या हमें कभी भी भूल से या जानबूझ करके, गोपियां कुछ नहीं जानती, वो फूल का हाथ जैसा नहीं बना सकती जैसा तुम लोग बनाती हो, अथवा हाँ वह कैसे फूलों का हार गूंथती थी तुम लोग नहीं जानते, ऐसे कभी भी स्मरण करते हैं? और ऐसे कहते 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 एकदम मूर्छित होकर के गिर पड़ी। बोली क्या? भुजग अगर सुगंधम मूर्धनाधस्, हाँ अपना अभय कमल हाथ हमारे सिर पर रखो, अब नहीं छोड़ोगे हमें। और हा कृष्ण कहते हैं मूर्छित होकर के। उद्धव जी उनके प्रेम का था नहीं पा सके, कुछ बोल नहीं सके। उनकी महिमा देखने के बाद में वो बोलने लगे, आशाम हो चरण रेण दुशाम हम श्याम, और भी बहुत सी बातें हैं। आशाम हो राधा जी विरह में व्याकुल होकर, हानाथ रमानाथ समुद्धर गोविंद गोकुल बीज निर्णिवार, हा कृष्ण हा प्राणना, कृष्ण नहीं प्राणना, हान रमानाथ और फिर प्राणनाथ, ब्रज के नाथ उनके आरती को दूर करने वाले, सारा गोकुल गोप गोपी समाज सारा है? ये विरह समुद्र में डूब रहा है, बस एक ही उपाय है आप आकर के हमें दर्शन दें। ये कह करके मूर्छित होकर के तब उद्धव जी ने आशाम हो चरण रेण दिशा, मैं गोपियों की चरण की धूलि की वंदना करता हूं। आशाम हो चरण रेण दिशाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यद् दुष्टजन सजन आर्द्र पथं चहित्वा भेजे मुकुंद पदवीं, भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिः। श्रुतियां भी जिस कृष्ण की महिमा को गान नहीं कर सकी, उनकी चरण धूलि को पा नहीं सकी, उसके लिए तपस्या किया, बहुत सी श्रुतियों ने उनको पाया भी। वही कह रहे हैं जैसे गोपियां भी श्रुतियां भी वेद उपनिषद की ऋचाएं भी गोप रूप धारण करके भजन करके भी था नहीं पा सकी। उस कृष्ण को अपनी मुट्ठी के अंदर में भर लिया, जैसे चाहती थी वैसा मैं चाहती थी। आशा महो चरण, ओहो हम यही आशा करते हैं कि ब्रज में कहीं भी जन्म हो जाए और गोपियों की चरणों की धूलि से स्नात हो जाए, विशेष करके अभिशाप करने के लिए जाए तो उनके चरणों की धूलि हमारे सिर पर लग्न हो जाए, हमारा जीवन सफल होगा। जावई श्री अर्चित अजादि भी आप तकाम योगेश्वर सदात्मनि रास गोष्ठम तद कृष्ण तद भगवत प्रतिलब्ध काम नस्तम तनेश बीजहो परिरब्धता। श्रिया जा भाई श्रिया जा भाई श्रियार्चित पाद पद्म श्रिया श्रिया माने लक्ष्मी। अरे इनके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए देवता लोग कितना भजन करते हैं ब्रह्मा शंकर और नहीं पाते। ऐसी श्रिया लक्ष्मी जोगेश्वर रपी बड़े बड़े जोगेश्वर मुनेन्द्र लोग भी कौन नारद व्यास सूप और जैसे लोग भी ये लोग भी जिनके चरण कमलों को अपनी समाधि में दर्शन नहीं कर सकते। और ये गोपियां क्या करती हैं उन चरण कमलों को साक्षात अपने वस्त्राचल पर धारण करके अपने विरह को शांत करती हैं। वंदे नंद ब्रजेष्टीणां पारिणीं महित्नुषा जासां हरि कथोद्गीत पुनाति भुवना ओ वंदे नंद ब्रजेष्टीणां। ये नंद गांव है ना नंद बाबा रहते थे। यहाँ की जो महिलाएं हैं कौन है ललिता विशाखा राधा राधिका ललिता विशाखा चंद्रावली प्रभृति जितनी भी हैं ये नंद गोकुल की है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु उनके चरण कमलों की एक पद रेणु की हम वंदना करती हैं सिर पर धारण करना चाहती हैं तो वह एक धूली होगी राधा जी के चरणों कमलों की हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो इन गोपियों की और उद्धव की जो बातें हुई उसको जो श्रवण करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और समझ बुझ करके हृदय में धारण करेगा बस। इसलिए इसका सुजोग कहीं मिले तो समझो जी हमारा जीवन सार्थक हो गया। ऐसी कथाएं कहीं जगत में नहीं है कोई भी आलोचना विशेषकर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये सब आलोचना ही नहीं। इसलिए यदि संसार से कोई ऐसी बातें हो जाए जो ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमें सुजोग हो जाए उनकी चरण की वंदना करो जो उनका कल्याण हो उनकी कृपा से हमारा इधर में हो गया। ये सब बातें यही नंदगांव में उद्धव क्यारी में हुई जहां पर कि हम भीतर नहीं जा सके उनकी कथाएं ही वहां पर भीतर में ला गए एक दिन लाएगी। हम लोग कुछ चेष्टा कर रहे हैं जिससे कि पुनरुद्धार उस स्थान का हो। स्थान का तो उद्धार है या उसका क्या हम उद्धार करेंगे एक यदि वो सेवा प्रकाश के रूप में दे रहे हैं प्राकृत रूप में यदि दे रहे हैं तो उसका हम लोग सेवा ग्रहण करके धन्य होंगे। तो आज यहीं तक कथा रहे कल हम लोग आज तो रात हो गई है सात हुई है कि भैया
पौने आठ
अच्छा तो भाई 10 मिनट धारो जंगली रूप शरीर न धारो रूप गोस्वामी के संबंध में अरण्य महाराज जी ने बतलाया जंगली रूप शरीर न धारो। आई एम ओनली ट्रांसलेटिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ओ कीर्तन माधव यानी कवि इज माधव एंड ही इज टेलिंग जंग कली रूप शरीर निर्धार स्तंभ ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन कपाट उघाड़ उद्धारत नहीं उघाड़त। यदि कली में कृष्ण नहीं रूप गोस्वामी नहीं आते शरीर नहीं प्रकट करते तो ब्रजप्रेम की महानिधि की कुठरी को कौन उखाड़ सकता था खोल सकता था। ये कोठरी की कपाट क्या है और कोठरी कौन है महाप्रभु स्वयं कोठरी उनके भाव जो है वो महानिधि है और उस कपाट को कौन उघाड़ता बस लरस से भर करके चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख करके उनका हृदय सीज गया और अपने हृदय के जितने भी भाव हैं जो उज्ज्वल नींदमणि और सब ग्रंथों में भक्त स्वामी सिंधु और यहाँ तक कि ललित माधव विदग्ध माधव इत्यादि में दिया है ये सब ये महानिधियां थी। कुठरी कौन है? महाप्रभु का हृदय, उसमें से खोला उन्होंने। कौन? रूप गोस्वामी। यदि नहीं होते तो कौन खोलता? रूप गोस्वामी से उन्होंने बात में ये सब खोला। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित, प्रकट रूप में ऐसी कोई बातें नहीं की। उन लोगों से गंभीरा में कुछ बातें हुई, किंतु इस प्रकार से सिलसिलेवार नंबर से क्रमशः प्रेम के विकास का, श्रद्धा से लेकर एकदम भाव महाभाव मदन मोदन ये भाव का वर्णन नहीं किया, जिसका हमारे रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल लीलमणि में किया है। निरखिर हंसन विशेष करके जिन्होंने बतलाया, यद्यपि रूप गोस्वामी ने और सबका वर्णन किया उज्ज्वल लीलमणि में, विशेष करके मधुर रस का वर्णन किया। क्यों? वो सब निधियां हैं, भक्त स्वामी सिंधु और सब चीजें निधि है, ज्वेल्स हैं। किंतु महानिधि क्या है? महानिधि क्या है? राधिका जी के हृदय की जो भावनाएं हैं, उनकी जो भावना है, ललिता विशाखा उनके गण हैं, उनके जो भावनाएं हैं, ये भी एक चीज नई सुन रखो। चंद्रावली, पद्मा, सभ्या इत्यादि के जो भाव हैं और इनके जो भाव है, महाभाव तो उसमें भी है चंद्रावली में, किंतु भाव वैचित्य इत्यादि जो है, प्रेम वैचित्य, वो तो राधा जी के सखियों में ही, अष्ट सखियों में ही है, वो चंद्रावली में नहीं जाएगा। क्यों? उसका आधार नहीं है वहां। क्या आधार चाहिए? उसमें आधार चाहिए स्निग्ध मधु स्नेह। दिस इज दी प्लेटफॉर्म ऑफ दैट, दे हैव नॉट दैट। वो स्नेह मधु उनमें नहीं है, उनमें क्या है? घृत मधु, घृत स्नेह, इसलिए उनमें नहीं है। इसलिए चंद्रावली इत्यादि का जो भाव है, चंद्रावली से समझो कि अष्ट सखियां श्रेष्ठ हैं, रूपमंजरी इत्यादि श्रेष्ठ हैं। क्यों? ललिता इत्यादि के भाव, राधा जी के भाव, राधा जी के सब समय संग में सेवा करते हैं। इसलिए कोई यदि राधा जी की सेवा करता है तो रूपमंजरी तो सब समय रहेंगी राधा कृष्ण के समस्त सेवाओं में, चंद्रावली नहीं रह सकती। इसलिए जो राधा जी की सेवा करेगा वो कृष्ण की सेवा भी अधिक कर लेगा। निरखिर हंसन पान विधायन, कौन पृथक कर पाए? नीर और खीर, दूध में पानी में दूध मिला देने पर जिस प्रकार से हंस उसको अलग अलग कर देता है, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे इन्होंने क्या किया? भक्ति के जो विचार है उसमें भक्ति के विरोधी जो भाव है, जो लोगों के समझ में नहीं आया, उस सबको छोड़ दिया। क्या ये प्रेम में भी क्या विरह होना चाहिए? हितहरवंश के संप्रदाय के लोग या निम्बार्क संप्रदाय के लोग ऐसा कहते हैं, प्रेम में विरह नहीं होता, ये उचित नहीं, इसलिए वो प्रेम में विरह नहीं मानते। रूप गोस्वामी ने उनको कहा, बुद्धिमान लोगों, बुद्धि के बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जहां विरह नहीं होगा वहां मिलन का आनंद कैसे होगा? इसको ये कहने से भी नहीं समझते। अभी कल हमने जो राधा जी के संबंध में विवाह की बात कही, तो एक तरफ से जितने बंदा वहां के नंदगांव के पंडित समाज है, कोई इसको हजम नहीं कर सका, हजम करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि बालपन से उनकी धारणा ऐसी है। तो यदि हुआ तो राधा जी को बेटा बेटी क्यों नहीं हुई? अरे उनको वहां हो सकता है, द्वारका में बेटा बेटी हो सकती है, एक एक स्त्री से 10 बेटे और 1 बेटी हुई। ओ तो यहाँ पर नहीं हुआ क्यों? इसका एक भी कारण यह हो सकता है कि कृष्ण पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ थे किंतु राधा जी बांझ थी, तो राधा जी बांझ हो गई। वाह, ये अपराध की बात है। अरे ये कहो, राधा कृष्ण नित्य संगनी है, गोलोक वृंदावन से जब से अवतरित हैं, उनकी हिलादनी शक्ति, उसकी विवाह करने की कोई जरूरत नहीं। विवाह भी हुआ तो राधा जी का भाव माने शैडो और कृष्ण का शैडो वो भी अलग कुछ नहीं था। जोग मैंने इनका विवाह करने ही नहीं दिया, नहीं तो श्रीमद भागवत झूठा हो जाएगा। भागवत सत्य मानते हो तो मानते हैं। अच्छा तो देखो तो पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा न पारे हम निर्वध्य संयुजा गृह श्रृंखला इत्यादि भागवत में ऐसे श्लोक कितने हैं भरे पड़े। वो कहते हैं अटत जद भवन अन्निकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतनम श्री मुखं चते जड़ उदीक्षताम पक्षते इत्यादि। ये सब जितने सब वो गोपी गीत है ना, वो गोपी गीत वो सारा तो वही है। उत्पत्ति का भाव, उन्नत उज्जवल भाव, पारकीय भाव। ये रूप गोस्वामी नहीं आते तो इसकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने शास्त्रीय प्रमाणों को लेकर के कसौटी पर कस करके और खरीद उतार करके दे दिया। समझ न सके वो अलग बात है, किंतु विद्वान लोग उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं। कोशब तज भज बृंदावन, कोशब ग्रंथ विचार, कौन संसार के इतने बड़े बड़े पदों को प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रशंसा और ये सब छोड़ करके ग्रंथ विचारने के लिए आता है। वृंदावन में विरचित बनाया जब पितु फल पितु मन फल आ, जब वन में सूर्य उदित होने के बाद में जब वन में नाना प्रकार के फूल विशेष करके कमल का फूल होता है तो वो खिल उठते हैं और मकरंद से भर जाते हैं। बड़ा सुगंध मकरंद से, उस समय में सुगंध से सारा वातावरण सुगंधमय हो। उस समय में मधुकर नहीं रहता तो उसका मूल्य क्या था? मधुकर ही आकर के उस पर बैठता है, उसका रस पान करता है। ऐसे रूप गोस्वामी जी नहीं आते मधुकर तो महाप्रभु के विचारों का या राधा कृष्ण जुगल का जो प्रेम ऐसा है ये कौन समझ सकता था? कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ये राधा कृष्ण के लीला के ये मधुकर है। राधा कृष्ण की लीला मधु है, पराग है, मकरंद है और ये मधुकर है। यहां तक कि भ्रमर कठोर लकड़ी में छेद करके बाहर निकल जाता है। सो मधुकर बिन कौन जानत विद्यमान करी बंधा। अरे इसका उदाहरण क्या है? रात में कमल खिल जाता है दिन में और रात में बंद हो जाता है। तो जब दिन में खिल जाता है तो भौरे आते हैं उसमें बैठते हैं, शाम को वो बैठ करके रस मकरंद पान करता है। उसी समय में सूर्य अस्त हो जाने के बाद धीरे 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 बंद हो जाता है। रात भर बंद रहता है, जो काट को छेद कर देता है भ्रमर कठोर चीज को। आज वो एक कमल के कोमल से सुकोमल पत्तों को छेद नहीं करता, ये प्रेम में बंध जाता है। वही भ्रमर संध्या के पश्चात मकरंद का पान कर इतना विभोर हो जाता है कि वो प्रेम में विवश होकर कमल के कोमल पखुड़ियों को भी छेद कर बाहर। उसी प्रकार वृंदावन धाम में जुगत विलास के कमल के पारखीय उन्नत उज्ज्वल रस रूप मकरंद की महिमा को अनुभव कर इस जगत में रूप गोस्वामी का अतिरिक्त कौन उसका प्रचार कर सकता है? इसलिए रूप गोस्वामी ने इसका प्रचार किया। इस पर चैतन्य महाप्रभु का भार भी था इसको प्रचार करना। बिंदारूपी वृंदावन कमल के मकरंद का स्वादन करने वाला भ्रमर स्वरूप है, उसकी कृपा के बिना मथुरा वृंदावन को और ब्रज देवियों को कौन जान पाता? मथुरा को भी कहा क्यों? अरे मथुरा नहीं रहता तो कृष्ण वृंदावन में कैसे आए? इसलिए उनकी भी महिमा है मथुरा की। मथुरा का महात्मा उन्होंने खुद अपने मुख से अपने हाथ से लिखा। कौन राधा माधव के भाव को उसके प्रति को जान पाता है? जिनके चरण कमलों की कृपा से सभी लोग राधा माधव का गुणगान करके और दूसरे से करा करके सुख होती है, ऐसे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में यह माधव अपनी उन आपकी महिमा का गया का। यह है रूप गोस्वामी का भाव। आज रात अधिक हो गई है। आई रिक्वेस्ट दैट अरण्य महाराज एंड दामोदर महाराज विल स्पीक अबाउट दिस। और आज हम लोग गए नंदगांव में, सब स्थानों को हमारा पांडा जी ने दिखलाया और नित्य करके अपने बेटे के साथ में भाव विभोर सबको कर दिया और बड़ी सुंदर सुंदर दो कीर्तन के नमूने पेश किए। वी वेंट टू नंदगांव और पांडा जी, रेस्पेक्टेड पांडा जी, आई नो हिम फ्रॉम हिज grandfather, perhaps he remember or not, I know him. He was more very sweet player of dancing. वो तुम्हारे बाबा और सुंदर नित्य कर देखा कभी, याद है? तो तुम्हारा बेटा भी अच्छा करेगा। तो इसका बाप भी बहुत ही सुंदर कीर्तन करने वाला था, गान संगीत विद्या में निपुण। वो दोनों बरसाना आनंद गांव दोनों के समाजों में उसकी सभी लोग आदर करके उसको बैठाते थे। तो हमारे पंडित जी भी ऐसे ही होना चाहिए हम लोगों के जैसे। तभी वेंट टू नंदगांव एंड ही यू नो इन द पैलेस ऑफ नंद यशोदा ओ ही वाज डांसिंग एंड सिंगिंग सो बेटर that all were charmed. We cannot repay him. So I request you all that though I have given him something, pranami, to Van Maharaj and Tirtha Maharaj, those who have, it is very good, and those who have not given, at once, quickly in three, four minutes, they should pay something. And those who have paid, oh, all right. And those who can pay, only they will. Those who have no rupees or no money, they should not. I will give for them. So very quickly, in a moment, you should give, that we will finish. और चले जाओ जल्दी से जो दे दिया से।
मंजरी का कीर्तन करते जाए तू से रैली मधुपुर
के
मंजरी यूजिन वाली
लो करो 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 करो, करो।